बाथरूम के अंदर फर्श पर पानी फैला हुआ था। एक कोने में बैठी सुषमा देवी कपड़े धो रही थीं। हाथ साबुन से भरे हुए, उंगलियां झुर्रीदार हो चुकी थीं और पीठ हल्की सी झुकी हुई। बाल्टी में पड़े गंदे कपड़े जैसे खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहे थे। उन्होंने एक शर्ट उठाई और जोर से रगड़ने लगी, लेकिन हाथों की ताकत अब वैसी नहीं रही थी। हर बार कपड़ा मसलते हुए उनकी सांस थोड़ी और भारी हो जाती। हाफ हाफ, हल्की सी थकान उनके चेहरे पर साफ दिख रही थी। उन्होंने एक पल के लिए हाथ रोके और दीवार से पीठ टिका ली। नल से गिरता पानी, टप टप की आवाज और उस बीच उनकी खामोशी। वहां उनकी आंखें कहीं खो गईं। मैं कैसे रहती थी? उनके चेहरे पर एक फीकी सी मुस्कान आई और फिर उसी पल बुझ भी गई। उन्हें याद आया रत्ना देवी की हवेली, वो बड़ा सा आंगन, सुबह की चाय और शामली। मानसी, ये लीजिए। मानसी, आप बैठिए, मैं कर लूंगी। मानसी, आपको ये पसंद है ना? हर छोटी बात, हर छोटा ख्याल बिना कहे। सुषमा देवी की आंखें भर आईं। कैसी बहू है वो, उन्होंने धीरे से कहा। दूसरे घर की होकर भी अपना बना लिया। उन्होंने अपने हाथों की तरफ देखा जो अब भी साबुन से भीगे हुए थे। और यहाँ उनकी नज़रें नीचे झुक गईं। अपना घर, अपने लोग। और मैं, एक कड़वी हंसी उनके होठों पर आई, मैं तो जैसे नौकरानी से भी बदतर हो गई हूँ। उन्होंने फिर कपड़ा उठाया और धोने लगी, लेकिन इस बार हाथों के साथ साथ आंखों से भी पानी गिर रहा था, आंसू जो पानी में मिलकर चुपचाप बह जा रहे थे। समय का कोई अंदाज़ा नहीं था, ना किसी ने पूछा खाना खाया, ना किसी ने कहा पानी पी लीजिए, बस काम, सिर्फ काम। तभी दरवाज़ा ज़ोर से खुला, नंदिनी अंदर आई। उसके चेहरे पर वही सख्त भाव थे। सासुमा, उसने तेज आवाज में कहा। सुषमा देवी चौंक गईं और जल्दी से हाथ पोंछने लगीं। जी, और कब तक एक ही काम लेकर बैठी रहेंगी आप? नंदिनी ने ताना मारते हुए कहा। इतनी देर से देख रही हूं बस यही कपड़े, उसने बाल्टी की तरफ देखा। इतना भी क्या समय लगता है? सुषमा देवी ने धीमे से कहा। बस हो ही गया है। लेकिन नंदिनी रुकी नहीं। जल्दी कीजिए, उसने सख्ती से कहा। नौकरानी आज छुट्टी पर है, बाकी घर का काम भी पड़ा है, झाड़ू पोछा बर्तन सब करना है आपको। हर शब्द जैसे तीर की तरह चुभ रहा था। सुषमा देवी चुप रही। नंदिनी ने एक और नजर डाली और फिर तंज कसते हुए बोली, वहां 4 महीने आराम करके आई है ना, तो अब थोड़ा काम भी कर लीजिए, शरीर भी फिट रहेगा। उसकी हल्की सी हंसी पूरे बाथरूम में गूंज गई और फिर वो मुड़कर बाहर चली गई। दरवाजा फिर से बंद। अंदर फिर वही सन्नाटा, लेकिन इस बार ये सन्नाटा और भारी था। सुषमा देवी कुछ पल तक वहीं बैठी रहीं, जैसे उनके अंदर कुछ जम गया हो। उनकी आंखें खाली सी हो गईं। फिट, उन्होंने धीरे से दोहराया। मैं यहाँ फिट होने के लिए आई हूँ, उनकी आवाज़ कांप गई। उन्होंने अपने भीगे हुए हाथों को देखा और फिर धीरे धीरे सिर हिला दिया। नहीं, इस बार उनकी आवाज़ पहले से अलग थी, धीमी जरूर लेकिन भीतर से मजबूत। उन्होंने कपड़ा नीचे रखा और गहरी सांस ली। अब बहुत हो गया, उनकी आंखों में हल्की सी चमक उभरी। दर्द अब भी था लेकिन उसके साथ एक फैसला भी, जहां इज्जत नहीं वहां रहना भी नहीं। उनके शब्द बहुत धीमे थे लेकिन हर शब्द में वजन था। बाथरूम से बाहर निकलते ही सुषमा देवी ने एक पल के लिए दीवार का सहारा लिया। हाथ अब भी भीगे हुए थे, उंगलियों में हल्की जलन और शरीर में थकान ऐसे बैठ गई थी जैसे कई सालों का बोझ एक ही दिन में आ गिरा हो। लेकिन नंदिनी की आवाज अभी भी कानों में गूंज रही थी, बाकी घर का काम भी पड़ा है। उन्होंने धीरे से सिर उठाया और हॉल की तरफ देखा। पूरा फर्श धूल से भरा हुआ था, कोनों में जमी गंदगी, टेबल के नीचे पड़े कचरे के छोटे छोटे टुकड़े, जैसे जानबूझकर किसी ने साफ नहीं किया हो। उन्होंने झाड़ू उठाई, एक पल के लिए हाथ रुक गए। कभी इस घर की मालकिन थी मैं, उनके मन में ख्याल आया, और आज उन्होंने खुद ही झाड़ू पकड़ ली। आज यही मेरा काम है। झाड़ू धीरे धीरे फर्श पर चलने लगी। हर आवाज जैसे उनके अंदर कुछ खुरच रही हो। वो एक एक कोना साफ करने लगी, धीरे धीरे संभल संभल कर, कमर झुकती जा रही थी लेकिन उन्होंने सीधा होने की कोशिश भी नहीं की। कभी हॉल, कभी गलियारा, कभी सीढ़ियों के पास, हर जगह बस वही और उनका काम। उधर सोफे पर बैठे अविनाश मोबाइल चला रहा था, सुजीत टीवी देख रहा था हंसी के ठहाके लगाते हुए। किसी ने एक बार भी ये नहीं कहा, माँ रहने दीजिए हम कर लेते हैं, बल्कि एक बार तो सुजीत ने पैर भी आगे बढ़ा दिए, जैसे रास्ता साफ करना भी जरूरी न समझा हो। सुषमा देवी उसके पैरों के पास झाड़ू लगाते हुए एक पल के लिए रुकी, फिर बिना कुछ कहे वो हिस्सा भी साफ कर दिया। उनकी आंखों में अब आंसू नहीं थे, शायद सूख चुके थे या शायद अब निकलने की ताकत ही नहीं बची थी। कुछ देर बाद झाड़ू खत्म हुई, उन्होंने गहरी सांस ली, लेकिन आराम का वक्त नहीं था। अब पूछा, उन्होंने बाल्टी में पानी भरा, उसमें फिनाइल डाला, उसकी तेज गंध नाक में चुभ गई। वहां फिर वही याद आई, शामली कहती थी, मानसी ये गंध आपको पसंद नहीं, मैं दूसरा इस्तेमाल कर लूंगी। उनके होंठ हल्के से कांपे, लेकिन इस बार उन्होंने खुद को रोका। याद करने से क्या होगा, उन्होंने खुद से कहा, हकीकत यही है। उन्होंने पोछा डुबोया और फर्श पर लगाना शुरू किया। घुटनों के बल बैठकर धीरे धीरे आगे बढ़ती रही, पानी से भीगा फर्श और उस पर उनका कांपता हुआ हाथ। हर स्ट्रोक के साथ उनकी सांस भारी होती जा रही थी, पीठ में दर्द उठ रहा था, घुटने जवाब दे रहे थे, लेकिन किसी ने पूछा नहीं। उल्टा नंदिनी फिर आई, इस बार हाथ में फोन था और आवाज पहले से भी तेज। सासू माँ, सुषमा देवी ने गर्दन खाई। हाँ बहू, ये कोना ठीक से नहीं हुआ है, नंदिनी ने पैर से एक जगह दिखाते हुए कहा, दोबारा कीजिए और जल्दी कीजिए, मेहमान आने वाले हैं शाम को। उसने फिर ताना मारा, या फिर वहीं की आदत पड़ गई है आपको, आराम की। ये सुनकर इस बार सुषमा देवी का हाथ रुक गया, बस एक पल के लिए। उन्होंने उस कोने की तरफ देखा, फिर नंदिनी की तरफ। उनकी आंखों में अब वही पुरानी बेबसी नहीं थी, कुछ बदला था, लेकिन उन्होंने कुछ कहा नहीं, बस चुपचाप फिर से पोछा डुबोया और वही कोना दोबारा साफ करने लगी। लेकिन इस बार उनके हर हाथ के साथ एक फैसला और मजबूत हो रहा था, बस अब और नहीं। काम खत्म होते होते दोपहर ढलने लगी थी, पूरे घर का फर्श चमक रहा था, लेकिन सुषमा देवी का चेहरा पूरी तरह थक चुका था। वो धीरे धीरे उठी, कमर सीधी करने की कोशिश की, लेकिन दर्द ने उन्हें वहीं रोक दिया। उन्होंने पास की दीवार पकड़ी और खुद को संभाला। पूरे घर में साफ सफाई थी, लेकिन उनके अंदर एक तूफान तैयार हो चुका था। आज उन्होंने झाड़ू भी लगाया, पोछा भी किया, अपमान भी सहा, लेकिन इसके साथ ही उन्होंने ये भी तय कर लिया था कि ये सब आखिरी बार है, अब जो होगा वो उनके फैसले से होगा और इस बार वो चुप नहीं रहेंगी।